आठ का कहते का लक्ष्य से अठारह मार्च 1963 अधिकार चला है जाने न नजर ये स्थापना नहीं है जिसको सिर्फ ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही समझते हैं। कहने में भल तुम भी के कहलाते हो परंतु लिखा पढ़ी में वह जहां भी हो सके तो ब्रह्मा मुखवंशावली कहना अथवा लिखना ठीक है क्योंकि ये नॉलेज है नई नॉलेज है और बहुत पेचीदी है। तो कहा जाता है यहाँ मम्मा बाबा रहते हैं तो नए लोग समझेंगे ये युगल है ऐसे कब नहीं समझेंगे कि ब्रह्मा मुख वंशावली है। उस पे ऐसे भी नहीं कहना है ब्रह्मा वंशी ऐसे तो बाप के बच्चे सभी हैं परंतु मुख वंशावली अक्षर लिखने से ऐसे कब नहीं समझेंगे कि ब्रह्मा की कुकवंशावली बच्ची एक एक अक्षर का छिरी समझना पड़ता है। अब ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता उन्होंने तो लिख दिया है कृष्ण को इतनी रानियां थी इतने बच्चे थे तो रोना कर दिया है परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है कृष्ण बच्चे को प्रजापिता नहीं कहेंगे वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है। उनको इतने बच्चे कहां से आए ये कहना तो बिल्कुल रंग है। शास्त्र में बहुत रोला कर दिया है वो लोग नहीं समझते हैं कि हम कोई क्लानिंग करते हैं ऐसे तो गाते भी है यदा यदा धर्मस्य परंतु क्लानिंग किस बात में है वो तो कोई समझते ही नहीं और बाप आकर के सिद्ध करके समझाते हैं कि शास्त्र में कितनी क्लानी लिखी हुई है। ईश्वर सर्वव्यापी है ये तो सभी शास्त्रों में सारा मदार भारत का इन शास्त्रों पर है और शास्त्रों में ही ग्लानी है। अब समझाया जाता है कि हम बीके तो जरूर है डॉक्टर हुए होंगे ब्रह्मा को इतने लौकिक बच्चे तो नहीं हो सकते। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है तो जरूर ब्रह्मा के साथ फिर माता भी चाहिए अगर माता भी हो तो भी इतने बच्चे पैदा कर न सके तो ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। तो समझाना है कि तुम भी प्रजापिता की संतान हो, परमपिता परमात्मा ने जब नई सृष्टि रची तो पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचाए, निराकार परमपिता तो परमात्माओं का बाप है ही, फिर साकार सृष्टि रची जाती है तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। प्रजापिता नाम सिर्फ इसलिए ब्रह्मा का है, विष्णु को व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। देखो ये बहुत समझने और विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, बाकी किसको समझाना कि बाप को याद करो मन मना भव, ये तो बहुत सहज बात, और ये किसी को भी डिटेल में समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा की तो जरूर मुखवंशावली ही हो सकती है, स्त्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में तुमेव माता च पिता, ये तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और ये भी एक बड़ी भारी गांठ है। जैसे बाप दादा कंबाइंड कहते हैं, ऐसे ही माता पिता भी कंबाइंड है। यहाँ साकार में मम्मा बाबा बैठे हैं, तो तुम उनको मम्मा बाबा व माता पिता नहीं कह सकते। ये महिमा हम करते ही है उस निराकार परम पिता परमात्मा की, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शास्त्रों में लिखा है तुमेव माता च पिता, वो बाप है तो ये माता हो जाती है। दुनिया में फिर जगदम्बा का नाम मशहूर है, और वो बात तो अलग हो जाती है। इस ब्रह्मा को तो जगदम्बा नहीं कहा जा सकता, परंतु ये ब्रह्मा ही जब कोई माता में प्रवेश करते हैं तो जगदम्बा गाई जाती है। तो पुरुष तन है तो ये बातें समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ी गुह्य बातें हैं। उस दिन भी बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट समझाई थी कि लौकिक बाप जो होते हैं वो तो बहुत खुशी के लिए बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को सुख देने के लिए क्रिएट करते हैं, बुरी बातें हैं ना, सभी की बुद्धि में तो बैठ नहीं सकती। उन बातों को समझने में बड़ी क्लियर बुद्धि चाहिए। तो बाप उसी से बच्चे मांगते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे हमको बच्चा चाहिए, एक भी बच्चा हो जाए तो हमारी वंशावली कट नहीं हुई, हमारे कुल का नाम निकले, तो सुख के लिए बच्चा चाहते हैं। परंतु बच्चा का अंधा लूला लंगड़ा जन्मता है, वह जन्मते ही बीमार रोगी होता है, तो कहा जाता है पांच जन्म के हमारे कर्म है ऐसे। इसमें माँ बाप को तो दोष नहीं कहेंगे, कहेंगे उनके पांच जन्म के कर्म आरे पड़ते। अब इस समय तो बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, सुख के लिए अडॉप्ट करते हैं और ऐसे कर्म सिखाते हैं जो आधा कल्प कब दुख की बात नहीं होगी। हमारे तीसरी शक्ति वाणी का दूसरा गुण देखो, ये बातें कोई भी गीता भागवत में नहीं है, भागवत आदि में तो ये सब जैसे दंत कथाएं हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अडॉप्ट करता हूं, डायरेक्ट आत्माओं अथवा जीवात्माओं को समझाते हैं। कहा भी जाता है आत्मा ऐसे कर्म करके आई है तो आत्मा को शरीर तो लेना ही है। अभी तुम आत्माओं को हम ऐसे अच्छे कर्म का सिखाता हूं, एक तो वहां माया नहीं होती है, फिर भी यहां के पुरुषार्थ के अनुसार वहां नंबर वार पद तो है, चाहे राजा रानी बनो, चाहे साहूकार बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, वो पुरुषार्थ करने की मार्जन भी है। तो ऐसे अच्छे कर्म करो जो कुछ पद पाओ, बलवान है ही सुखदाऊ, दुख का नाम निशान नहीं है, फिर भी नंबरवार मर्तबे तो है ही ना। यहां दुखदान में भी मर्तबे और वहां भी सुख तो सभी को है, फिर भी मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। तो इस समय हम ऐसे कर्म सिखाते हैं जो वहां ऐसा कोई बच्चा वो नहीं होगा जो दुखी हो, जो पास्ट के कर्म कूटे जैसे आप होता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं आज बहुत बुरी बातें सुनाता हूं, सर्विस में जो तत्पर्य उनको ये बातें चुभेगी और उनका विचार सागर मंथन चलेगा। उनको ऐसी एक ही बात समझाएंगे जो उनके बुद्धि के कपाट ही खुल जाएंगे, जो बहुत ऊंची कोटि के महारथी होंगे वो फूल के फील करेंगे। ये तो बहुत बुरी बात है, सेकेंड थर्ड ग्रेड वालों को धारणा नहीं होगी, ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए जो कोई भी समझे। ये बात तो राइट है, बाकी अच्छा अच्छा तो बहुत कहेंगे, परंतु आकर के ले में वो तकदीर पर है। जो कल पहले वाले शिकील के बच्चे होंगे वो तो जाट उठाए देंगे, कि हमारी नॉलेज ही ऐसी गुहे है। ऐसे भी नहीं है ये नॉलेज कोई परंपरा चल रही है, नहीं, नॉलेज तो अब मिली फिर वापस जाएंगे तो खलास। ये मर्जी भी है, मर्जी व जन्म का पार्ट ही खलास हो जाता है। फिर होती है प्रारब्ध, ज्ञान सारा बुद्धि से निकल जाता है। ऐसे नहीं समझना कि आत्मा ज्ञान के संस्कार ले जाती है, नहीं, आत्मा ज्ञान के संस्कार नहीं ले जाती है, ज्ञान का सार ले जाती है। जैसे यहाँ मनुष्य पढ़ाई के संस्कार ले जाते हैं, तो संस्कार जन्म लेते हैं, परंतु वहाँ ऐसे नहीं होता है। हाँ, हम राजा ही के संस्कार लेते हैं, ज्ञान का पाठ तो पूरा हुआ, प्रारब्ध मिली और खलास, फिर हम राजा ही में होंगे। और ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, परंपरा तो चलता नहीं। मनुष्यों ने फिर लिख दिया है कि परंपरा से चला आया, समझते हैं कि शास्त्र भी परंपरा सत्युग से चले आते, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। ये सब ड्रामा अनुसार बना हुआ है, कोई का दोष नहीं। कोई मनुष्य देखो तो शिव की पूजा करेंगे, कोई मनुष्य देखो तो कहेंगे ये नहीं है तो सब कल्पना है। तो देखो कितनी मूर्खता है। हम अभी समझते हैं हम भी मूर्ख थे, शिव की पूजा करते थे, समझते तो कुछ भी नहीं। ये सन्यासी भी पूजा करते हैं, है तो ये सब भक्तिमत। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे जब सर्वव्यापी है तो खास मंदिर में जाकर की पूजा क्यों करते हो? इसमें समझाने की बड़ी श्रुण बुद्धि चाहिए। ये जानते हैं जो ऊंच राजा रानी बनने वाले होंगे वो उतना ज्ञान धारण कर सकेंगे, सर्विस करेंगे और कर भी रहे हैं। तुम अपना बाबा को भी देखते हो, बच्चों में भी समझ सकते हैं कौन कौन अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, और बाबा का अच्छा दुकान संभाल रहे हैं। नई नई बच्चियों को दुकान जमाने में देर ही लगती है, तो बाबा कहते हैं ये भी व्यापार है। कहते भी हैं कोई बिरला व्यापारी निकले, और फिर उनको रत्नागर भी कहते हैं। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने वाला ज्ञान सागर, ये ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों से भविष्य के लिए मालामाल कर देती। ये भी जानते हो ज्ञान से सदगति होती है, सदगति रहता है, एक को कहा जाता है, वो एक ही सदगति रहता ज्ञान देते हैं। और सदगति सतयुग को कहा जाता है, सत्य ज्ञान से सत्ययुग स्थापन होता है, सत्य बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, अज्ञान से दुर्गति होती है, दुर्गति कलियुग को कहा जाता है। बाबा ने समझाया है कि हमेशा गांधी का नाम लियो, उसने भी कहा पतित पावन, वो या अपन को पति सिद्ध किया। पावन करने वाला तो एक भी नहीं है, गांधी का नाम तो बाला है, उनके हाथ में गीता भी थी, कहते थे पतित पावन सीताराम। अब राम क्यों कहा, जबकि गीता में भगवान कृष्ण है? इसका मतलब राम परम पिता परमात्मा के लिए है, परंतु हाथ में तो गीता थी, तो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव बरोबर पतित पावन, ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण है, तो ये कितनी बड़ी गांठ पड़ गई। अठारह मार्च से दिवाली करनी चाहिए। अब ये बातें बाप के सिवाय तो कोई समझा ही नहीं सकते हैं, ये है ही पतित दुनिया। तो पतित दुनिया में ये महात्मा कहां से आ गए? पतित दुनिया में गुरु भी पतित हो गए। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, जहां तहां आते भी गरीब लोग हैं, बड़े बड़े आदमियों से बल तुम माथा मारते हो, वो तो सिर्फ हम मान लेने के लिए आते हैं, तुमको भी मान लेने के लिए आते हैं, बल चीफ जस्टिस भी आते हैं तो बढ़ाई के लिए, तो प्रेसिडेंट बनते ही रहते हैं। आपको पास भी आकर सभापति बनेंगे, बल राधा कृष्णन भी आए तो वो भी मान मर्तबे के लिए आएंगे, बाकी समझने के लिए तो गरीब ही निकलेंगे। बाबा ने कहा है साहूकार कोई सौ में एक आएगा, और साधारण भी एक आएगा, तो सौ में जास्ती से जास्ती दस निकलेंगे। जो मीडियम साहूकार होंगे बाकी सब गरीबी आएंगे, अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। मंजिल बड़ी ऊंची है बाकी पहले पहले एक हफ्ता भट्टी में जरूर रहना पड़े, ये कायदा है। और साथ भी चाहिए भट्टी में ब्राह्मणों का, सूत्रों का मुंह भी देना देखे। ये नारी बड़ी गुरी है, भगवान पढ़ाते हैं सृष्टि का मालिक बनाने के लिए। मासी का दर्द हो रही है और ये है भी गरीबों के लिए। देखो मम्मा गरीब और साधारण, परंतु मतवा कितना ऊंचा लेती है। पहले माता फिर पिता, कहते भी है तुम्हें वह माता च पिता है, तो ये उस बाप की महिमा। परंतु बाबा ने निर्माता को ऊंच मर्तबा दिया है, क्योंकि मनुष्य का मर्तबा भी होना चाहिए ना। अपना तो गीत ही था कि मनुष्य का क्या मर्तबा है, वो लोग फिर गाते हैं सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान। ये नहीं समझते हैं कि अभी तो बर्फ क्रांति पहनी है, कभी बहुत अच्छा था। समझते हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा है, परंतु हम तो कहते हैं अच्छा था जबकि गाढ़ गाढ़े इसका राजी था। वो लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, ये मुख्य चित्र हैं, इसलिए बाबा ये लक्ष्मी नारायण के चित्र बनवाए रहे। लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, क्यों बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं है? बड़े बड़े भव्य मंदिर बनावेंगे, जगदम्बा का छोटा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति भी छोटी बैठाते हैं, कोई तो कारण होगा। तो बाबा भी ऐसा चित्र बनवाते हैं ताकि कोई को समझाने में सहज हो जाए। इनका बड़ा मर्तबा था, जरूर इन्होंने बहुत सर्विस की होगी। मर्तबा का सारा मदार सेवा पर है। उस सहज राजयोग और ज्ञान से ऐसा राजाओं का राजा बनेंगे। किंग और क्वीन लक्ष्मीनारायण का नाम वाला है। कोई कोई मंदिरों में चित्र तो बहुत अच्छे है, कहा फिर नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। नारायण को चार भुजा तो लक्ष्मी को दो भुजा दे देते हैं। अब आर्थ तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, तो बुद्धुओं को समझाना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल ही बेचारे अनजान है। जैसे हम चकराता में गए थे, वहां खेती करने वाले पहले नहीं थे, उनको तो अपना धंधा ही अच्छा लगता था। अब ये भी सभी अधर्मी है, कहते हैं हम रिलीजन को नहीं मानते क्योंकि जानते ही नहीं है कि हमारा रिलीजन कौन सा है। ये हिंदू धर्म तो सोवता नहीं है, इसलिए अपने धर्म को न जानने के कारण कह देते हम रिलीजन को नहीं मानते। अरे जानते ही नहीं है तो मानेंगे कैसे, सब समझते हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म है, देवता धर्म कहें तो पुरानी बात याद भी आई, ये भारत कितना अच्छा है। अभी तो ये झूठा घमंड है जो कहते हैं हमारा भारत बड़ा अच्छा है। वास्तव में तो भारत हर बात में कंगाल है। पहले पहले 100% ऊंचा था, अभी 100% नीचे गिरा है। एक तरफ कहते हैं कितना अच्छा देश हमारा और दूसरे तरफ कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया। सब चीज काल्पनिक होती जाती है। भारत पर तो सभी को तरस पड़ता है, वो भी जानते हैं कि आगे भारत बहुत अच्छा था, अभी तो कंगाल बना है। पर तो भारतवासी ये भी नहीं जानते हैं कि हम कंगाल बने। इस समय भारत था अनाथ आश्रम है, अनाथ माना ही आर्फन, नास्तिक समझ लो। ये हमारे सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि नास्तिक अथवा आर्फन कैसे है। अरे में भी जो सेंसिबल बच्चे हैं जिनका दिमाग ज्ञान से भरपूर रहता है वो समझते हैं और खुश होते रहते हैं। समझते हैं हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ऐसे दिमाग वाले तो खुशी में रहते, खुशी में नाचते रहेंगे। बाप तो कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा ऊंचा बरसा लेते हैं तो तुम भी ऐसे फॉलो करो, मेरे से तुमको बातचाही लेनी है। इन्हें मम्मा बाबा से नहीं लेनी है, परंतु मुझे फॉलो नहीं करना है। फॉलो इन ब्रह्मा को करना है। हाँ मेरे पीछे पीछे मेरे धाम में तो आना ही है। प्योर नहीं बनेंगे तो आग में जलाए तुमको ऊपर ले जाना पड़े। اس لیے میری مت پر چلو، وفادار فرمان بردار بنو، نہیں تو سجائیں کھائیں گے۔ جیسے لوکک باپ سمجھاتے ہیں ویسے پارلوکک باپ بھی سمجھاتے ہیں۔ اگیان کال میں بھی یہ بدھی میں رہتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کو فلاں ماسٹر پڑھاتے ہیں، اور یہ تو جانتے ہو یہاں تو باپ ٹیچر گرو تینوں ہی ہیں، ان کو تو دگنا تگنا یاد کرنا چاہیے، پرنتو مایا ایسی ہے جو یاد ہی نہیں کر دیتی۔ باقی یہ گیان سمجھانا تو بہت سہج، ان کو باپ ایسے کرنا سکھاتے ہیں جو ہم بھوشیہ میں کب نہیں ایسے کہیں گے کہ پاسٹ کے کرما اڑے آ گئے۔ بابا کی ایک ایک پوائنٹ میں کتنا سار بھرا ہوا ہے، بہت کوئی راز ہے۔ دھارنا تب ہوگی جب بابا سے یوگ ہو، ارتھات لو، کیونکہ وہ ہے پرانوں سے پیارا۔ 21 جنموں کے لیے پرانوں کو جم گھٹوں کی پھانسی سے چھوڑاتے، آگے تو کال کو بھیجتا تھا، تریسٹھ جنم گرب میں سجا دیتا تھا، ابھی تو کہتے ہیں میں کالوں کا کال ہوں۔ ستیوگ تریتا میں تو یہ کال کا نام ہی نہیں ہوگا، واستو میں یہ کال آج تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آتما اپنے سمے پر ایک شریر چھوڑ دوسرے شریر میں جاتی، وہاں گرم جیل میں اپنے پاسٹ کرموں کے انوسار سجائیں بھوگنی پڑتی ہے۔ باقی جیسے ستیوان ساوتری کی کتھا دکھایا ہے، ایسا تو کوئی کال آدھی ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ ہی شریر چھوڑ گرم جیل میں اپنے کرموں کی سزا بھوگتے، ستیوگ میں تو گرم مہر ہوتا ہے، اس کا بھی درشانت ہے شاستر میں ہے کہ وہ باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ یہاں تو گرو جیل ہے کیونکہ دکھ بھوگتے رہتے۔ تصویر یہ دکھاتے ہیں کہ ساگر میں پتی پر آیا، واستو میں گرو محل کی بات ہے، اور یہ ہے گیان گرو محل۔ کتنی باتیں سمجھاتے ہیں پرنتو دھارنا بھی تو ہونا، پیپل کا پتا کتنا ہلتا ڈلتا ہے، مایا کے جھونکے آتے ہیں تو بہت نشچے نشچے میں آتا ہے۔ آتما کی بات ہے تو بچوں کو بہت میٹھا بننا ہے، محنت سے بھی سیکھنے پڑتے ہیں۔ جیسے بابا میٹھا ہے، سکھ کا ساگر ہے، بھارت کو سکھ دھام بناتے ہیں، ایک ایک بات بڑی بری سمجھائی جاتی ہے۔ اس کو دھیان کرنے سے اندر میں جیسے ہیئر ہیئر نکلتا ہے، جیسے ڈانسنگ گرل ہوتی ہے ڈانس کرتی ہے تو واہ واہ کرتی ہے نا، اس میں بھی دل خوش ہو جاتی ہے۔ او ہو یہ پوائنٹ تو بہت اچھی ہے، کوئی تو جھٹ سمجھ جاتے ہیں کہ بابا تو کتنے اچھے کرم سکھاتے ہیں۔ یہ کرم کرم وکرم کی بات بھی گیتا میں ہے، پرنتو گیتا میں کرشن کا نام ڈال سارا کھنڈن کر دیا۔ ابھی پھر کہہ دیتے ہیں کرشن رام شیو نارائن سب وہی، اس لوگوں کو بنائی دیا اچیوتم کیشوم رام نارائن तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात बैठ गई कि एक कैसे है। ये बातें बहुत मीठी है, परंतु हम किसको जाकर के सुना दे। सबसे अच्छे है वानप्रस्थ वाले, उनको तो सदैव फुर्सत ही फुर्सत रहती है। वानप्रस्थ के आश्रम बनारस में भी बहुत हैं, परंतु कोई बच्चा उड़ने वाला चाहिए। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे उन डायरेक्शन पर चलते ही नहीं है। नहीं तो सेंटर खुलने के पहले ग्राहक देखना चाहिए। देखो बच्चियां अजमेर गई, वहां मनुष्यों की कितनी गंदी रहनी सहनी है। ऐसे ऐसे जो कई तो स्नान भी नहीं करते। यहां तो देखो कितनी परहेज। आजकल फैशन भी कितना निकला है, नाटक में जाने से इमोरलिटी के संस्कार आ जाते हैं। दिल्ली में देखो बड़े बड़े आदमियों को गाने का फैशन का बड़ा शौक रहता है, समझते हैं हमारा भारत तो जैसे बलिस्तान बन गया है। अभी ये तो पता है ही नहीं कि ये बलिस्तान ही अभी कब्रिस्तान बनना है। कभी कभी विचार आता है कि अब तो ये बम छूटेंगे। कितने फैशनेबल धनवान फकीर लोग, नफीस लोग, सभी खलास हो जाएंगे। ये भी हम समझते, परंतु मनुष्य तो बेचारे अंधकार में पड़े हैं। कुछ भी होने में देरी थोड़ी लगती है। ये बॉम्बे कितनी अच्छी है, परंतु हमारे होते ये बॉम्बे नहीं रहेगी। जब सागर उथल खाएगा तो क्या हाल हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज तो आएंगी, परंतु कैसे कैसे मरती रहेगी। हमको तो पहले से ही समझ में आ जाएगा कि अब हम तो जाते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं, अब हम जा रहे हैं जाकर परम धाम विश्राम करेंगे, फिर तो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। परंतु ये ज्ञानवान की अवस्था रहेगी, सभी की तो नहीं रहेगी। तुम बच्चे बीमारी में भी बड़े हर्षित होते रहेंगे, समझेंगे हमने तो कमाई कर ली है। बीमार पड़ गए तो क्या, हम तो जाकर के ऊंच पद पा लेंगे। अंदर भी ये खुशी बनी रहेगी। ऐसे बहुत सारे सन्यासी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। उनको पहले से ही ये पता पड़ जाता है कि अब हमको तो जाना है। तो बच्चे भी रहेंगे तो ऐसा खुशी का पारा उस समय रहेगा। जैसे मैनेजर के लिए बताया कि रजवाड़े कुल में इसने जन्म लिया है तो अच्छा है ना, बड़ा छोटा होगा परंतु इनकी चलन तो बहुत अच्छी होगी ना, कब रोता भी नहीं होगा। तो ये हम जानते हैं कि हम संस्कार ले जाएंगे तो माँ बाप को भी बड़ा सुख देंगे। यहाँ के बिच्छू चिंडन बच्चे तो बड़ा दुख देते हैं, हम जानते हैं। जैसे कृष्ण की इतनी महिमा है, कितना प्यार करते हैं, वैसे हम भी सबको बहुत प्यारे हो। तो ऐसी अवस्था भी बनानी चाहिए। बाकी सिर्फ भाषण करना ये तो बहुत हुनर होता है। परंतु अंदर में तो समझते हैं कि हमारे अंदर पोलम पोल भरी पड़ी है, और यहां तो साथ ही साथ ऐसी अवस्थाएं भी चाहिए। इस नॉलेज का नशा बहुत भारी रहता है। अच्छा, बाप दादा बीजी मम्मा का सिद्धि के बच्चों को मिल पाए
तो काशी को आगे क्यों
रखते हैं? संबल माने क्या होता है? संबल माने आधार। क्या? संबल माने आधार। आधार का मतलब है ये रूमाल है और इसका ये आधार है हथेली। तो भगवान कहाँ आते हैं? भगवान जहाँ आते हैं वो आधार ग्राम कौन सा है? नाम क्या दिया भक्ति मार्ग में? वाराणसी। वाराणसी का अर्थ ये है जहाँ ज्ञान का रस बना है, वो बनारस। अब वास्तव में ज्ञान का रस कहाँ बना है? ज्ञान अलग बात, और उसका रस निचोड़ के निकाला जाए वो अलग बात। तो कहाँ बना है ज्ञान का रस? अरे वाह भैया, ज्ञान का रस कहाँ बना है वो पता ही नहीं। वो कहाँ है बनारस? जहाँ बेहद ज्ञान का रस बना वही बनारस हो गया, वहीं से काशी निकलती है। उन्होंने हद की काशी बना दी है और यहाँ तो सारी बेहद की बातें हैं।
शिव समाज शंकरी बनता
है
मेरा बच्चा, तो उनको फॉलो करने वाले एडवांस के बच्चे हैं।
शंकर को फॉलो नहीं करना है, डुबिया लुटिया डुबो देगा।
बाबा ने खुलने में बोला है कि शंकराचार्य ने कहा है आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा सो परमात्मा जो है वो शिव के साथ रहने वाला, मतलब शिव समाज पढ़ने वाला, वो एक ही बच्चा के लिए लागू होता है ना। तो आज सब आत्मा सो परमात्मा जो गायन है, मतलब वो एक के लिए तो दुनिया नहीं मान रही है, सब उसके लिए मतलब टैली कर रहे हैं ना इस बात को। तो ये एक के लिए मतलब किस आधार पर होता है आत्मा सो परमात्मा?
क्योंकि एक में ही परमात्मा आता है। जिस एक में परमात्मा आता है उसके बारे में ही मुरलियों में 20 बार बताता है, चाहे वो मुरलियां हो चाहे वो अव्यक्तवाणियां हो, वो सारी मुरलियां और अव्यक्तवाणियां एक की तरफ इशारा कर रही है। वो ही एक पढ़ाई है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने पहचान। एक की पहचान हो गई तो सारा ज्ञान बुद्धि में समझ गया। एक की पहचान नहीं है और घुमा फिरा के नाक से पूछ रहे हैं।
नहीं बाबा, मेरा कहने का ही मतलब था कि आत्मा सु परमात्मा को एक के लिए बोला जाता है।
हाँ जी,
तो आज इसको सारी दुनिया आत्मा सु परमात्मा खुद के लिए भी बोल रहे हैं ना, मतलब जैसे शंकराचार्य ने कहा है, तो यहाँ शूटिंग हो गई है ना। वो
तो शूटिंग कौन कर रहा है? जिनको अनिश्चय पैदा होता है एक भगवान के ऊपर, यह निश्चय पैदा करने के बाद भी अनिश्चय पैदा हो रहा है, वो भगवान को सर्वव्यापी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, या कोई दूसरा कर रहा है?
अनिश्चय बुद्धि।
निश्चय बुद्धि हो तो 100% निश्चय बुद्धि हो के कहो कि शिव बाबा हमारा बाप है। ऐसे नहीं 99% हमारा बाप है और 1% नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, फिर पूछते क्यों बार बार?
उन प्रश्नों को लेकर,
उन प्रश्नों को लेकर के क्यों पूछना?
नहीं, उस प्रश्न के लिए नहीं पूछ रहे बाबा।
हाँ,
जिसका कर्म प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ दिखाई देगा उसे फॉलो करेंगे सारी दुनिया।
हाँ,
तो वही जो मना आत्मा से परमात्मा के लिस्ट में है ना, वही एक बात।
हाँ,
समाज बनेगा अंत में सारी।
वही तो बात गुप्त बता दी, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है, ऐसा नारियल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। और
इसलिए तो ब्रह्म कुमारी बीके वाले बोलते हैं ना कि शंकर का,
ब्रह्मा कुमारियां इसलिए नहीं बोलती हैं, ब्रह्मा कुमारियां तो इसलिए बोलती हैं कि मुरली में आया हुआ है, शंकर का कोई पार्ट नहीं है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां भी बोलती हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन बाबा की भाषा को वो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित नहीं समझती हैं। बाबा ने जब बोला शंकर का कोई पार्ट नहीं है तो उसका अर्थ ही है कि शंकर का पार्ट कोई कर्मेंद्रियों से नहीं बजता हुआ देखता है, वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है और याद कोई पार्ट नहीं है।
वो
मुरली कौन मना करता है कि वेदवाणी ब्रह्मा के द्वारा नहीं निकली, वो तो सारी दुनिया भी इस बात को मानती है। क्या वेदवाणी किसके मुख से निकली? ब्रह्मा के मुख से, लेकिन किसी ने समझा नहीं, तो समझाने वाला टीचर चाहिए भी नहीं। जो समझाने वाला टीचर है वो बाप ही है या कोई दूसरा है? एक बाप ही है, जो एक बाप है वो टीचर है, वो ही सदगुरु रूप में सदगति करता है सबकी। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो ब्रह्मा तो नहीं है, है? नहीं, वो उनसे कहो कि क्या ब्रह्मा बाप टीचर सदगुरु है? ब्रह्मा सदगुरु है, सदगुरु है, सदगुरु मिला दलाल सारी दुनिया की सदगति करता है या पहले चला गया? माउंट आबू में आता है, माउंट आबू साड़ी पहन के आता है, ब्लाउज पहन के आता है या भगवान बन के आता है? इस दुनिया में किसी ने सुना आज तक कि भगवान औरत के रूप में आया? क्या है, मेल फीमेल का कुछ नहीं है। दुनिया जानती है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, और शिव के और शंकर के मंदिर बनते हैं। इसका राज क्या है? क्या झूठी बातें हैं? एक तरफ बाबा कहते हैं चित्रों मूर्तियां प्रैक्टिकल के बनते हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है, फिर तीसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं तुम शंकर को मत काटो नहीं तो तुमको काट डालेंगे। तो राज को समझना चाहिए, शंकर का पार्ट नहीं है का मतलब उसका कर्मेंद्रियों का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम साबित कर सको। उसका सारा पार्ट बुद्धियोग का है, और बुद्धियोग से जो पार्ट बजाया जाता है उसको कोई आंखों से देख नहीं सकता। कर्मेंद्रियों से बजाया हुआ पार्ट सब कोई देखते हैं, और कर्मेंद्रियां निराकार को नहीं होती है, उसको होती है साकार को होती है। इसलिए शिव की एक ही कर्मेंद्रिय पूजी जाती है और इंद्रियां नहीं पूजी जाती, और इंद्रियां देवताओं की पूजी जावेंगी, देवताओं की लिंग इंद्रिय नहीं पूजी जाती, क्योंकि और देवताओं ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, एक ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसलिए वो अमोघ वीर्य कहा जाता है, उसका नाम है अच्युतम, च्युत माने नीचे गिरना, तो संपन्न बनता है तो ऐसी तेज बन जाती है कि उसका वीर कभी स्खलित हुआ नहीं देखा जा सकता। वो शिव समान बन चुका, साकार तन में प्रवेश होने के बावजूद भी कोई भी कर्म करेगा तो भी स्खलित नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा, उसको बुढ़ा नहीं कहा जाता। शिव कभी बूढ़ा नहीं बनता,
शिव कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन शंकर के लिए जो बात बताई अभी हम और अभी बाबा ने बताया था कि शंकर का जो पार्ट है वो वंडरफुल है और वो भी दुर्योधन दुशासन के लिस्ट में भी आता है, तो 1% वो फिर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है।
क्यों बेटे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? दुर्योधन दुशासन जो कनेक्शन है वो क्रोधियों के लिए है या कामियों के लिए है? या दोनों के लिए? दोनों के लिए है, लेकिन रिजल्ट क्रोधी का और कामी का रिजल्ट भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे मनुष्य होते हैं 1, 2, 4, 8, 100, 200, 500 स्त्रियों वाले, और सेवक का परिवार कितना बड़ा है, हजारों का परिवार है, फिर क्या स्थूल बच्चे पैदा होते हैं?
कुमारी वालों की जब भी रैलियाँ निकलती है, रैलियाँ निकलती है उन लोग की भाषणबाजी या ऐसा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या फिर कोई सत्संग रहेगा उसके पीछे पीछे नवर स्वागत यात्रा रहती है ऐसा कुछ रहता है तो उसमें साथ में वो लोग ज्वाइंट हो जाते हैं। यार भक्ति मार्ग की जो रैलियाँ निकलती है उसमें साथ में डर जाते हैं, वहाँ भी वो लाउड स्पीकर लेके चिल्लाते रहते हैं ट्रक में से कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है,
और वो एक व्यापी है कहाँ कहते हैं,
और गीता के भगवान के लिए भी वो गीता का भगवान कृष्ण नहीं ऐसा करके चिल्लाते थे, लेकिन वो शिव शंकर है ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन शंकर कौन है वो सब कुछ नहीं पता,
जानते ही नहीं, बताएंगे कहाँ से?
तो फिर बोलने का राइट कैसे उन लोगों की, अगर जानते नहीं है तो राइट कैसे बोलने का?
इन बातों के क्लैरिफिकेशन के लिए ही तो अब ये युद्ध शुरू हो रहा है। युद्ध शुरू होने में पांचों पांडव उतावले होते हैं या एक ही पांडव है जो ज्यादा उतावला रहता है लड़ाई लड़ने के लिए? क्या नाम है उसका? भीम, भयंकर। जो कुछ होना हो सो आज हो जाए फैसला, परमिटू या मरमिटू?
शंकर अलग चित्रों में दिखाते हैं तो शंकर का साकार में फोटो दिखाया वो,
हाँ।
और एक लिंग दिखाया तो अलग है, शिव शंकर अलग है वो ही बताते हैं। तो सूक्ष्म अवतार में झाड़ कहाँ से आएगा, वो चंद्र कहाँ से आएगा, वो चित्र दिखाया तो शिव शंकर बोले ना तो उनको मानना ही पड़ेगा।
इतनी बुद्धि पब्लिक की कहाँ चलेगी?
ब्रह्मा कुमारी की जो बता रही है,
पब्लिक की बुद्धि तो तब चलेगी जब राम जन्मभूमि का प्रैक्टिकल जैसा झगड़ा खड़ा हो जाए। जो बाबा ने मुरली में बोला है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया जल मर के स्वाहा हो गई। स्वाहा होने का मतलब क्या है? ये झगड़ा ऐसा विकराल रूप धारण करेगा, ये एक धर्म का झगड़ा नहीं है, इसमें सभी धर्म वाले सभी मठ पंथ संप्रदाय वाले कूदेंगे। मीठा मीठा करके ज्ञान सुनाते रहो तुम किसी को, वो कब तक चलेगा झूठा? सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी।
इसमें बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं वो खुश हो गए, उनका कहे जो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो आप लोग जो पूछ रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है।
तो फिर मजा आएगा तभी तो बात प्रत्यक्ष होगी। जब पब्लिक को मजा आएगा तो पब्लिक की बातों को अखबार वाले भी डालेंगे, टीवी वाले भी डालेंगे, उनके पैसे उसी एडवर्टाइजमेंट से खलास हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है तो तुम्हें बिना पैसे का माल चाहिए या पैसे वाला चाहिए? बिना पैसे के डालें तो अच्छा है ना।
लेकिन मौरवपुरी सागरवाड़ी जो है उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु संत सुषमा तनवा, तो बहन ने बताया कि वो ब्रह्मा कुमारी जो ब्रह्मा को लेके बहती है तो ब्रह्मा सीजन में क्यों आता है? ब्रह्मा ने तो कहा कि मैं रोज आके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुरली के पॉइंट है, दूसरी पॉइंट है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूत्र अर्थवासी और प्रजापिता यहाँ होना चाहिए, वो हमारे पास मुरली है तो मुरली के आधार पर हम लड़ सकते हैं ना।
तो लड़ते क्यों नहीं, कितने साल हो गए?
हम तो लड़ते हैं, हमारे पास जो भी आते हैं उनके साथ
एडवांस ज्ञान निकले सन
ताकत लगा देते हैं।
सन 76 से लेकर के अभी तक कितने
हैं बाबा? जो मुरली है हमारे पास आकाशवाणी है बाबा, 69 में 70 की मुरली भी तो प्रूफ है।
अब 36 साल तो हो गए ना
सर, में जो वाणी चलाई अभी तो बाप दादा ने उसमें बिल्कुल प्रूफ कहा है कि बस साकार तन सहारा है तुम बच्चों को, तो साकार तन कौन है? अच्छा गुलजा दादी की जब बात आती है तो गुलजा दादी तो
वो बात इन लोगों को समझा जो बैठ के पूछ रहे हैं कि एक व्यापी कहाँ है, अभी 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 पूछ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ वो इन लोगों को समझाओ जो सैकड़ों अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बोला हुआ है।
पढ़ी नहीं मुर्गी पड़ी है, इसके पास मुर्गी का भंडार है, वो सुलझने के लिए तैयार है।
बाबा से बात करने का बहाना माने चौनरियाना है, वही वही कथा बार बार बैठ करके सुनाओ सत्यनारायण की।
अच्छा प्रजापिता यहाँ होना चाहिए तो ब्रह्मा तो चले गए तो फिर यहाँ पब्लिक के सामने कौन प्रजापिता हो?
हाँ जी हाँ जी
बाबा, एक मुरली में बाबा ने बताया उन ब्राह्मणों को जाके पूछो तुम्हारा ब्रह्मा का है, वो कहेंगे कि सुक्ष्मवतन में तो तुम साकार में क्या कर रहे हो, तो तुम साकार में तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में होना चाहिए।
तो वो कहेंगे कि ये तो बाहर के ब्राह्मणों के लिए बोला, हम लोगों के लिए थोड़े बाबा ने बोला था,
बाबा ने उन ब्राह्मणों को थोड़ी पूछने के लिए बोला है।
बाबा आज मुरली में पॉइंट आया गीता में है ज्ञान, गीता में है ज्ञान, भागवत में है चरित्र,
चरित्र है
ज्ञान से मतलब ज्ञान से पर हमारा ऊंचा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मतलब ज्ञान से सद्गति होता है, तो शिव भगवान का चरित्र है गुप्त साक्षात्कार।
चरित्र साकार के द्वारा होते हैं या निराकार के द्वारा होते हैं? ज्ञान निराकार सुनाता है या साकार करता है? निराकार ज्ञान सुनाता है, निराकार के पास ज्ञान है क्योंकि वो जनमन के चक्र में नहीं आता है, साकार जनमन के चक्र में आता है, जो जनमन के चक्र में आता है वो सब भूल जाता है, तो निराकार के ज्ञान से सरगति होती है और साकार के चरित्र हैं, लेकिन उन चरित्रों से हमारी सरगति नहीं होती है, काहे से सरगति होती है? ज्ञान से सरगति होती है।
साक्षात्कार वाले जो संत पुरुष की जो बात वाले जो है संत पुरुष है, आकर हम बाबू हमारे जो संत पुरुष है, तो मैं बोला आज तक भगवान तक पहुँचाया क्यों नहीं, मंदिर तक किसी ने पहुँचाया है क्या? आज के लोग कोई अगर प्रश्न करते हैं कि आसाराम बाबू है वो भगवान है, जो ये अपने रामदेव है, तो आज तक भगवान तक किसी ने पहुँचाया है क्या? अगर भगवान तक नहीं पहुंचे इसीलिए तो भगवान को नीचे आना पड़ता है अपनी गति सदगति करने के,
तो आया है ना आसाराम बापू ने, चलो ना तुम
आसाराम बापू खुद बोल रहे क्या हरे राम को याद करो?
हाँ
तो वो कहाँ से बोले
हरे राम को याद करो?
तो राम को याद करो,
आसाराम बापू शिवो हम नहीं कहते,
मुझ में राम तुझ में राम सब में राम,
वो कहते हैं
आत्मा से परमात्मा नहीं कहते,
आत्मा तो परमात्मा कहते हैं, उनका जो चेले आते हैं वो चुप हो जाते हैं
किस बात में?
ये बात में कि आसाराम बापू क्या
ठीक है, तुम्हारे सामने तो सभी चुप हो जाएंगे, तुमको तो भगवान का ज्ञान मिल रहा है,
पवन जो है पवन बना सकता है क्या आत्मा? आसाराम बापू चलो इतना बड़ा भगवान समझते वो पवन बना सकता है क्या? पतित पवन तो उनको नहीं कहा, पतित पवन सीताराम को ही कहा है,
ओ व्यक्तिगत बातें छोड़ दो, नहीं तो
वो उसके चेले तो आते हैं बाहर वाली दुनिया का
भक्ति मार्ग में। अभी आप ये मत बोलिए बाबा, ये अलग है प्रश्न, भक्ति मार्ग में
अभी आप ये मत बोलिए, मैं बंद कर देता हूँ ये बैल को मुसीका लगाना,
तो 8 पॉइंट में नहीं है ये बात, भक्ति मार्ग में गीता का भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसी का शूटिंग ब्रह्म कुमार ये करते हैं, जो गीता का भगवान दादा लेखराज जी ब्रह्मा उर्फ कृष्ण, यहाँ सभी का बीज जो है एडवांस में है ना बाबा, तो यहाँ इसकी शूटिंग कैसे होती है यहाँ एडवांस में?
यहाँ तुम्हारी तुम्हारी जो बड़ी अम्मा है उनको भूल गए, बड़ी अम्मा को भूल गए, तो बड़ी अम्मा गीता का भगवान किसको मानती है? तो उनके फॉलोअर यहाँ नहीं है, अभी तो वो प्रत्यक्ष नहीं हुई है, मैदान में नहीं आई है, घूंघट में है। जब घूंघट से बाहर आएंगी तो इनमें से आधे तो उधर ही चले जाएंगे। वो दुनिया का बड़े से बड़ा धर्मगुरु है एडवांस में, जो बोला है कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। अब वो प्रकृति भी बहुत पावरफुल हो गई, जड़त्वमयी बुद्धि होने के बावजूद भी, इसलिए वो यहीं बैठे हुए हैं सब। जो आगे चल करके बाबा का ही अपोजिशन करने लग पड़ेंगे।
मुंबई वाले तो नहीं करेंगे बाबा?
ओ बम्बई एक हर हर बम बम की नगरी है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छी बात है, सच्चाई को मानो तो मानो, नहीं करो तो हर हर बम बम।
बाबा नंबर वन बच्चे, थोड़े बच्चे जेल की तरफ भागेंगे तो थोड़े बच्चे जगदम्बा के पीछे भागेंगे।
थोड़े बच्चे
माना जैसे कि मेजोरिटी।
देवियों की पूजा सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया भगवान के पीछे पड़ती है या देवियों के पीछे पड़ती है? सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं दुनिया में, भारतवर्ष में? तो फिर शिव के मंदिर तो हैं, लेकिन शिव है भोला बाबा। ऐसे चित्र बनाए दिया है जैसे रावण, वो ज्यादा आकर्षित नहीं करेगा देह अभिमानियों को। अब ब्रह्मा तो बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा है, और वो तो पुरुष चोला था, ये तो स्त्री चोला है, इसके पीछे तो ढेर सारे हैं, ऐसे बहुत आकर्षण करने वाले हैं, हजार भुजाएं हैं, तो कहाँ भागेंगे? बोड़े बाड़े के पीछे भागेंगे। बाबा के बाबा मुंह का पक्का लगा लिया।
हाँ 36 साल हो गए, 36 यानी 3 और 6 दोनों
है,
36 साल हो गए।
36 साल
76 से अभी तक 36 साल
हो गए। हाँ।
हो जाएंगे।
हाँ।
कभी बाप की यानी बाप उसी के लिए यानी कि महाभारी महाभारत का जो प्लानिंग है कि अभी 36 का जो आंकड़ा है एक दूसरे के यानी ब्रह्मा कुमारी और एडवांस के बीच में जो 36 का है एक दूसरे से ऑपोजिट में।
हाँ।
वो क्लियर होएगा।
हाँ।
तो 2012 आता है 36 के हिसाब से,
तो 36 चल रहा है ना दोनों तरफ, वो भी 36 आने वाला है जहाँ सारी दुनिया लड़ भर के खलास हो जाएगी। उसकी शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए, वो लड़ाई की शुरुआत कहीं से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है होनी चाहिए, तो 36 की शुरुआत हो गई। अब उसमें देखें कितने 63 बनते हैं, और 63 जन्म में कौन कौन साथ रहते हैं, और कौन कौन जुदा हो जाते हैं, वो अब देखने में आएगा।
36 आंकड़ा
फेमस है ना, एक दूसरे का विपरीत है, उनका मुंह इधर तो उनका मुंह इधर, और 63 आंकड़ा सन्मुख है।
33 साल हर एक है ना, 33।
हाँ।
तो 3 साल ज्यादा हो गए,
यहाँ ज्यादा नहीं होने चाहिए।
हर एक का ब्रह्मा शंकर 33।
हाँ।
तो तीसरी बुद्धि के लिए
ब्रह्मा ने कितने साल के बाद शरीर छोड़ा था? हाँ? 33 साल के बाद ही शरीर छोड़ा था ना, वो 33 साल है, ये 3 साल और ऐड कर दिए। परीक्षा होती है तो थोड़ा समय दिया जाता है, तैयारी कर लो।
माया बाप की बेटी है बोला है,
बेटी है
माया बाप के डायरेक्शन पे चलती है, बाप उसको जो बोलता है ना कि ये जो विकार में जाते हैं या बाप के यानी थोड़े भी कमजोर हुए श्रीमत के खिलाफ गए उनको पछाड़ फेंकती है, हाँ तो वो बाप का ही काम बाप ने यानी उसको दिया हुआ है। तो जो अभी आपने बताया बाबा की माया और प्रकृति एक होके जो पावरफुल हो जाएगी तो फिर उसके पीछे जाने की सवाल क्यों आता है बाबा, लेकिन उसके फॉलोअर होने का सवाल ही क्यों आएगा,
देवान ज्यादा है आत्मिक स्थिति कम है तो कहाँ जाएंगे,
लेकिन माया बाप की बेटी है माया बाप के साथ ही रहेगी ना, तो फिर बाप के साथ माया है फिर
बाप के साथ नहीं रहेगी, बाप के साथ है अभी देखने में आती है बाप के साथ, सन्मुख है या बेमुख है, जो बेमुख है उसको साथ कैसे कहते, मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 लाख जन्म नहीं लेती, परंतु एक ही आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की शूटिंग कैसे करती है, तो बड़ी बात है क्या, अरे एक आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती होगी तो उससे जो कम पावरफुल होगी वो थोड़ी कम योनियों में भ्रमण करेगी, उससे भी जो कम होगी वो और कम में भ्रमण करेगी, इसलिए मुरली में पूछा है 84 लाख और 84 का अनुपात क्या है, है 1 लाख हर जन्म में 1 लाख योनियां ऊपर से नीचे उतर आती है, 84 लाख योनियों में पहले जन्म में उतरने वाली सबसे सतो प्रधान योनियां होंगी या नीची कोटि वाली होंगी, सबसे सतो प्रधान होती है, कौन करते हैं भंडारा आप, हाँ भंडारे में क्या करते हैं,
खाना खिलाते हैं दक्षिणा देते
हैं, हाँ किसको खिलाते हैं खाना, साधु लोगों को, आपको पता लग जाता है ये साधु है साधु नहीं है, है
अभी क्या करूं,
अभी आपको ज्ञान नहीं मिला, अभी जो तुमको मिला है वो बांटो,
जो 8 रुद्र बनके
है
अब तो देख पहली जो पारिवारिक इकाई तैयार होती है 4 रुद्र माला के और 4 विजय माला के बनते
हैं,
तो 8 में से सर के ऊपर 8 अक्षर है उनमें से 4
नहीं, वो रुद्र माला के 8 मणके रुद्र हैं, वो परिवार नहीं है, किसी बाप को बच्चे पैदा होते हैं तो 8 बच्चे पहले कुमार होते हैं कि शादीशुदा पैदा होते हैं, तो कुमार है 8 पारिवारिक इकाई वो नहीं है जो सर के ऊपर बैठी हुई है, वो विजय माला के मणके बनते हैं तब पारिवारिक इकाई कही जाती है,
पहली पारिवारिक इकाई में कितने
पहली पारिवारिक इकाई में आठ ही होंगे।
तो
वही सूर्यवंशी, चंद्रवंशियों का मुखिया, बौद्धिवंशियों का मुखिया और इस्लाम और संन्यास धर्म का मुखिया।
इसका पहचान
और